हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेना पद्मं पत्रं इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यहां पे ब्रह्मणि शब्द भगवान को सूचित करता है, दिव्यता को सूचित करता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है। वो सिद्धांत ये है कि भक्त इस जगत में रहते हैं लेकिन इस जगत के नहीं होते। मैं इसको रिपीट करूंगा, भगवान के भक्त जगत में रहते हैं लेकिन जगत के नहीं रहते। ऐसा लग सकता है कि भगवान के भक्त भी कार्य करते हैं भौतिक जगत में, लेकिन उनके कार्य उनको भगवान के धाम ले जाने के योग्य बनाते हैं, मुक्त करने वाले कार्य होते हैं। और हम देख सकते हैं कमल का पत्र, आप कभी नेट पे भी देख सकते हैं इस चीज को, कमल के पत्र पे अगर बूंद गिरती है तो वो बूंद ठहर नहीं पाती, इसके ऊपर तुरंत अलग चली जाती है। बल्कि इस कमल के पत्र का डिजाइन देख करके बहुत सारे बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें जो बाहर की जो सतह है वो इस प्रकार की होती है कि धूल रुकती नहीं है, धूल पे जैसे पानी गिरता है अपने आप धूल बह जाती है। तो कर्म करना हमारे लिए अवश्यंभावी है क्योंकि हम जीवात्मा हैं, लेकिन अगर वो कर्म भगवान को समर्पित हैं तो वो हमको मुक्त कर देगा। तात्पर्य जरा देखिए, यहां पर ब्रह्मणि का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों का की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। ये जो भौतिक जगत है ये एक्चुअली केवल तीन एलिमेंट से बना है। इसे कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसके बारे में चर्चा तो हम आगे के श्लोकों में भी आगे के चैप्टर्स में करेंगे डिटेल में, लेकिन एसेंशियली जो मटेरियल एनर्जी है वो केवल इन तीन तत्वों से बनी है और इन्हीं के सम्मिश्रण से व्यक्ति अलग अलग चीजों को अनुभव करता है। जैसे आप सब लोग जानते हो कि जो रोशनी है या कोई टीवी पे हमें कुछ दिखाई पड़ता है तो उसमें केवल तीन डॉट होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उन्हीं के कम ज्यादा चमकने से हमें अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के दृश्य प्रस्तुत होते हैं हमारे सामने। तो उसी प्रकार से ये जगत में जितनी भी विविधताएं दिखाई हमको पड़ती हैं वो वस्तुतः तीनों गुणों का सम्मिश्रण ही है, कम या ज्यादा मात्रा में। वेद मंत्र सर्वम ही एतद् ब्रह्म, तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नम् च जायते, तथा भगवद गीता में मम योनिर् महद् ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। थोड़ा समझिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको समझ में आने के लिए। सब कुछ ब्रह्म है इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। सर्वम एतद् ब्रह्म, भगवान पूर्णतः स्पिरिचुअल है और ये जगत भगवान के द्वारा आया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। आगे भगवान समझाएंगे ये पूरा जगत में जितनी भी वस्तु हैं, ईशा भाष्यम इदम सर्वम यत्किंचत जगत्याम जगत, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान से आई हैं और भगवान पूरी तरह से स्पिरिचुअल हैं। अब थोड़ा ये समझना चाहिए कि ये जो जगत की वस्तुएं हैं वो भगवान से आई हैं लेकिन भगवान के स्वरूप शक्ति से थोड़ा अलग है, भिन्न शक्ति है भगवान की, इसलिए कॉन्शियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ये हमारा कह सकते हैं मेरे पास सारे किंडल है या मेरा बेड है, ये कॉन्शियस नहीं है। लेकिन जब इन वस्तुओं का मैं प्रयोग भगवान की सेवा में करता हूं तो इनके प्रयोग से मैं बंधता नहीं हूं, यानी कि फंक्शनैलिटी में स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ये माइक जो मैं यूज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो ये माइक स्पिरिचुअल है नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इसका उपयोग भगवान की सेवा में करता हूं तो ये इसका उपयोग करने से मैं बंधता नहीं, इसलिए क्रिया में स्पिरिचुअल हो जाता है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। प्रभुपाद इस बात को बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं एक जगह, कि जब पदार्थ को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है तो वो अपने आध्यात्मिक गुणों को वापस धारण कर लेता है, क्योंकि अंतोगत्व भगवान से आया है। लेकिन ये हमें समझ में आना चाहिए कि भले ही जो प्रकृति है भगवान से आई है, लेकिन भगवान का स्वरूप इससे अलग है, भगवान सच्चिदानंद है, जबकि प्रकृति सच्चिदानंद नहीं है इस प्रकार से। तो ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने विग्रह के रूप में, अपने फोटो, अपने जो डीटी है मूर्ति में आ जाते हैं और हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं हम खाली सोच रहे हैं इसलिए आते हैं, नहीं, भगवान वहां पर रहते हैं। और जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो वो भोग भी भगवान स्वीकार करते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से उसको स्पिरिचुअलाइज्ड कर देते हैं। तो फिर जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी चेतना भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। ईश्वर उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? व्यक्ति शुभ कर्म करना चाहता है ताकि उसको भोग करने का मौका मिले। जब हम कोई शुभ कर्म किए रहते हैं तभी हमको भोग इत्यादि प्राप्त होते हैं आगे जाकर के। और अशुभ कर्मों से क्यों बचता है? क्योंकि उसकी वजह से उसको दुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर क्रिया भगवान के लिए की जा रही है, जैसे इस समय भगवान के लिए ये प्रवचन दे रहा हूं ताकि लोग भगवान के बारे में जाने, तो इसका शुभ और अशुभ से कोई मतलब नहीं रहता। प्रायः लोग इस मामले को थोड़ा समझ नहीं पाते, कहते हैं भाई ठीक है अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन शुभ कार्य करने में क्या दिक्कत है, पुण्य कार्य करने में क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। पुण्य कार्य करने के बाद उनको भोगने के लिए मुझे इस जगत में आना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जब हम इस जगत में आएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र बना रहेगा। तो जब हम भगवान को अपने कर्म समर्पित कर देते हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है एक्चुअली, जब भगवान को अपने कर्म हम समर्पित कर देते हैं तो भगवान की कृपा से पहली बात उस कार्य को करते समय कोई हमको पुण्य, कोई पुण्य या फिर कोई पाप नहीं लगता, अपितु पूर्वगत किए गए पाप और पुण्य भी ध्वस्त हो जाते हैं और हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभकारी चीज है। क्यों लाभकारी चीज है ये भी सोचिए, क्योंकि देखिए हमारे लिए अपनी इंद्रियों से कार्य करना बड़ा आसान है। लोगों को बोला जाए कि आप ध्यान करें तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल कलयुग में तो स्पेशली, लेकिन बोला जाए कि आप झाड़ू मार दीजिए, आप कुछ वस्तु उठा के इधर से उधर रख दीजिए, तो ये बड़ा आसान होता है। तो अब मान लीजिए आपका घर है, उस घर में आप ड्राइंग रूम बनाना चाहते हैं, तो ये हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है कि लोग देखेंगे हम कितने पैसे वाले हैं। लेकिन उसी ड्राइंग रूम की जगह कोई व्यक्ति है डेटी रूम बनाए, ठाकुर जी को अपने घर में रखे, भगवान को रखे और सुंदर से रूम सजाए ताकि भगवान उसे प्रसन्न हो, तो इस क्रिया से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो हम इस रहस्य को अगर समझें तो हमारा बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यहां तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। इसलिए हमारा शरीर हमारा नहीं है, भगवान का है, इसलिए इसको हम लोग अग्नि में नहीं झोंक दे सकते हैं। हम शरीर नहीं है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेगा, प्रभुपाद बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, कहते हैं भक्त ना तो शरीर से निकलना चाहता है और ना वो शरीर में रहना चाहता है। एक्चुअली भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो शरीर में रहते हैं तब तक उसका उपयोग वो भगवान की सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस शरीर से आसक्त नहीं होते, लेकिन शरीर का रख रखाव करते हैं ताकि जब तक वो भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा, जब तक वो इस शरीर में है तब तक अच्छे से भगवान की सेवा कर सके। तो इसलिए शरीर की का ध्यान रखना भी, इसका रख रखाव करना भी भक्ति हो जाता है। प्रभुपाद जी एक जगह समझाते हैं इस बात को। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में भी कहते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होने का मतलब क्या है। कृष्ण तो हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत आसान है, इस चीज को श्रीमद् भागवत में बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम पूजनम, वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के बारे में सुनना, जैसे हम भगवद गीता से सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोलना, उनके उनके वाणी का प्रचार करना और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना। उसके बाद जब आप श्रवण कीर्तन करोगे तो स्मरण भी अपने आप होगा, जैसे अभी मैं स्मरण करके बोल रहा हूं श्लोक को, और भगवान के विग्रह को घर में रखना, उनकी पूजा करना। तो ये चार, मतलब इस चार पांच क्रियाओं के द्वारा कम से कम, बाकी आगे जाकर के भगवान के लिए प्रेयर्स हैं, जैसे ब्रह्म संहिता भगवान की प्रेयर है, भगवदगीता में भगवान की प्रेयर्स हैं, उसका अर्पण करना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, ऐसे प्रकार से 9 प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है श्रवण कीर्तन। जब भगवान का श्रवण ठीक से करते हैं तो आप बाकी सारी क्रियाएं बढ़िया से हो जाती हैं। और इस संबंध में एक बहुत सुंदर श्लोक 4वें स्कंद में भी आता है कि जिस व्यक्ति का जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित है, ऐसा व्यक्ति का जीवन ही सफल है। ये मेरे को बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक लगता है। श्लोक है, नारद जी बोलते हैं, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनोवचः निर्णाम ये नहि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। 4वें स्कंद के 31वें श्लोक चैप्टर का 9वां श्लोक है ये। इसमें बोलते हैं कि एक व्यक्ति, उसका जन्म, उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मन, उसका वचन, सब श्रेय को प्राप्त होते हैं, कह सकते हैं परफेक्ट हो जाते हैं जब वो भगवान हरि की सेवा करते हैं, जो सभी विश्व के आत्मा है, परमात्मा है। इसी चीज को श्रीमद् भागवतम के 1वें स्कंद में नारद जी समझाते हैं। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के 1वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक है। इसमें बोलते हैं, एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयश्चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। तो कह रहे हैं यहाँ पे व्यासदेव जी को नारद मुनि कि भाई ये सबसे जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने एकदम अच्छे से डिसाइड कर लिया है, और कुछ मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छे से ढूंढ लिया है कि अपने दुखों की निवृत्ति करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है कि हम अपने दुखों को समझ नहीं पाते कि हमारे दुखों की निवृत्ति का कारण भी हमारे कर्म है, और हमारे दुखों की निवृत्ति का क्षमा कीजिएगा, हमारे दुखों की शुरुआत का कारण भी हमारे कर्म है, और हमारे दुखों की निवृत्ति का कारण भी हमारे कर्म है, और वही कर्म है खाने पीने सूंघने सब कुछ के। लेकिन अगर वो कर्म भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, और वो कर्म अगर हमारे भोग के लिए होते हैं तो हम बन जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अपने कर्मों को सीखे किस प्रकार से वो भगवान को समर्पित कर सकता है। हरे कृष्णा।